झूठ देही संग पापा पाई, देह के भोग में आवे जा, देह के मद में क्यों मद माता, साखी रूप नहीं कियो बुझा। मेरी जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में वाणी कह रही है कि झूठ देही संग आपा पाई। मैं इस नाशवान देह को अपना स्वरूप समझकर, अर्थात मैं शरीर ही हूं, इसके ऊपर मेरी कोई सोच नहीं है, तो ये जो मेरी गलती है, इस गलती के कारण मैं क्या करता हूं कि सारा जन्म अपना देह के भोग कमाने में, उनको भोगने में, उसी को अपने परिवार के लिए लक्ष्य बनाने में व्यतीत कर देता हूं। लेकिन एक दूसरी बात वाणी कह रही है, देह के मद में क्यों मद माना, तो देह के नशे में क्यों फंसा हुआ है। मैं देह हूं ये चीज के ऊपर एक गहरा नशा है, इसलिए जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सत्पुरुष हैं, वो इन दो चीजों को अलग कर कर देख रहे हैं। हमने इन दो चीजों को मिला दिया है, मेरे अंदर ये होश ही नहीं है कि मैं जीव हूं लेकिन समझ रहा हूं अपने आप को देह, और इसीलिए मैं अपने उस स्वरूप की पहचान करने के लिए जीवन नहीं जीता जिसके बारे में वाणी कह रही है, साखी रूप नहीं कियो अच्छा, अपने साक्षी रूप की पहचान तुमने नहीं की। वास्तव में मैं देह को जानने वाला हूं, देह नहीं। यदि मैं देह होता, विचार करके देखो, एक बड़ा सरल सा प्रमाण, सरल सा प्रूफ मेरे सामने मौजूद है, जिस पर यदि मैं विचार करूं तो अभी ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं देह नहीं। वर्तमान में या इस समय जब जाग रहा हूं तो मेरे अंदर ये विश्वास है कि मैं देह हूं, क्योंकि देह से देख रहा हूं, देह से काम कर रहा हूं, देह से सुख भोग रहा हूं, देह के कारण ही सुखी दुखी हो रहा हूं, सारा जीवन तो मेरा देह करके है। इसलिए मैं इस वहम से कभी मुक्त होने की कोशिश नहीं करता कि मैं देह नहीं। लेकिन जब मैं सो जाता हूं, नींद जब कच्ची होती है तो हम सब जानते हैं कि हमको स्वप्न दिखाई पड़ता है। स्वप्न से जागने के बाद मैं केवल यह कह देता हूं कि वो केवल एक स्वप्न था, मेरा ही स्वप्न था, क्योंकि सब कुछ तो यही खत्म नहीं कर देते। वो कहते हैं सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, वाणी आपको गाइड कर रही है। जिस प्रकार रात्रि का स्वप्न है उसी प्रकार ये हमारा जो संसार दिखाई पड़ रहा है, देह दिखाई पड़ रही है, ये हमारा जागृत स्वप्न, आंख खुली है हम जान रहे हैं, उसी प्रकार जान रहे हैं जिस प्रकार स्वप्न में मेरी आंख खुली होती है, मैं सारा स्वप्न का संसार देखता हूं और वहां मेरा नया शरीर भी होगा। लेकिन जागने के बाद मैं कभी विचार करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ना मेरा कोई गुरु है ना मेरा कोई गाइड। मैं जैसे आम संसारी लोग जीते हैं मैं भी वैसे जीवन जीता रहता हूं, गलत निश्चय को रखता हूं। तो सत्पुरुषों को कभी वहम नहीं होता कि मैं देह, और हम इस वहम से कभी मुक्त नहीं होते कि मैं देह हूं। ये वहम है इससे हम कभी मुक्त नहीं। मां जी ने एक वचन और कहा है जीवन गाथा में, वो भी ध्यान से सुने। देखिए सत्पुरुष विभिन्न शब्दावली में विभिन्न तरीके से हमको वही निर्णय सुना रहे हैं, वाणी में भी वही बात आ रही है, गुरु के वचन में भी वही बात आ रही है, लेकिन क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते नहीं या मां जी की बात पढ़ रहे हैं श्रद्धा भाव से पढ़ ली, या कोई घटना पढ़ रहे हैं मां जी की बताई हुई वो भी श्रद्धा भाव से पढ़ ली, लेकिन इस पर गहन चिंतन करने की हमारी आदत ही नहीं है, इसलिए हमारी बुद्धि किसी ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच पाती। देखिए मां जी कह रहे हैं प्रेमी जी उसको विचार करके देखे कि मेरी धारणा क्या होती है और सत्पुरुष कैसे देखता है, कैसे कहता है, कैसे निश्चय करता है। प्रेमी जी बुद्धि सारे शरीर में फैली हुई है, देवी जी, बुद्धि सारे शरीर में फैली हुई है, इसका ताल्लुक यानी संबंध शारीरिक संस्कारों के साथ होने के कारण असली तत्व को नहीं समझ सकती। इसीलिए शरीर से नाता तोड़कर अर्थात आसक्ति रहित होकर बुद्धि को सतमार्ग में दृढ़ करना चाहिए। इसलिए शरीर से नाता तोड़कर अर्थात आसक्ति रहित होकर बुद्धि को सतमार्ग में दृढ़ करना चाहिए, यह ही सत्पुरुषों के जीवन का सार है। जो सत्पुरुष के जीवन का सार है, वही मेरे जीवन का भी तो सार है। शरीर से वो भी मनुष्य ही थे, मनुष्य रूप में ही पैदा हुए हैं, मैं भी मनुष्य रूप में ही पैदा हुआ हूं, तो उनके जीवन का सार ये है कि मेरे जीवन का सार वो क्यों नहीं होगा। गुरु मैंने इसलिए धारण किया है कि गुरु जो अनुभव कर रहा है और उस अनुभव को करके जो उसको चैन मिला है, जो शांति मिली है, मौत का भय, हर तरह के दुख से वो मुक्त हो गया, तो वही ज्ञान वही मार्ग वो मुझको सिखाना चाह रहा है, ताकि मैं भी हमेशा के लिए मौत के भय से मुक्त हो जाऊं, संसार के दुखों से मुक्त हो जाऊं और मुझको परम शांति प्राप्त हो जाए। लेकिन यदि मैं इन पर गहरा विचार ही नहीं करूंगा, मात्र सुन लूंगा या पढ़ लूंगा, आप विचार करके देखो आपको क्या मिलेगा। आपने ये वचन सुन लिया कि क्या आपने इस बात का निश्चय आ रहा है कि प्रेमी जी बुद्धि सारे शरीर में फैली हुई है, इसका ताल्लुक यानी संबंध शारीरिक संस्कारों के साथ होने के कारण असली तत्व को नहीं समझ सकती, इसलिए शरीर से नाता तोड़कर बुद्धि को सतमार्ग में दृढ़ करना चाहिए। शरीर से नाता तोड़कर अर्थात शरीर की आसक्ति छोड़कर सतमार्ग में दृढ़ करना चाहिए, यह ही सत्पुरुषों के जीवन का सार है। दुनिया के जितने भी सत्पुरुष हुए उनकी बातें पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, वो कभी भी अपने आप को शरीर समझते ही नहीं थे। इसीलिए चाहे उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, चाहे उनका कत्ल कर दिया गया, चाहे उनके शरीर पर रोग आ गए, लेकिन उनके जीवन इस बात के प्रमाण है, शरीर पे बड़े से बड़ा कष्ट आने पर भी उन पर उसका कोई असर नहीं। उदाहरण के तौर पर हम महर्षि रमण को देख ले, उनकी बाह की कोनी में कैंसर हो गया, उनके मना करने पर भी डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर दिया। वो सार्कोमा था, इसलिए वो शरीर तो फैल नहीं था और बड़ा हो गया। कुछ महीने बाद फिर मद्रास से डॉक्टर आया, उसने कहा इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो सारा फैल जाएगा, दूसरा ऑपरेशन कर दिया। वो एनेस्थीसिया के लिए कहने लगा तो महर्षि ने मना कर दिया। कहते हैं कि उनके चेहरे पर इस बात की शिकन भी नहीं थी कि मेरी बाह का बिना बेहोश किए हुए ऑपरेशन होगा। तीसरी बार जब नंबर आया तो पूरी बाह कवर कर ली थी, लेकिन फिर भी तीसरा ऑपरेशन जो है डॉक्टर कंपल्सरी कह रहे करना ही करना। फिर उन्होंने कोशिश की तो बेहोश करने की, फिर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे ही ऑपरेशन करो। तो डॉक्टर कह रहे थे उस समय कि हम जानते हैं इस बात को, इस समय मरीज को इतनी तकलीफ होती है कि वो छू भी नहीं सकते हम उसकी बाह को, इतना दर्द होता है। लेकिन महर्षि के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है उस दर्द की, जैसे कि फिर ही कोई ना तीसरा ऑपरेशन भी हो। तो चौथे ऑपरेशन की नौबत आई, इस बीच में लगभग एक साल का पीरियड निकल गया, तब उन्होंने साफ उन्होंने कहा कि ये वहां काटनी पड़ेगी। उनका महर्षि ने साफ मना कर दिया, वहां काटने की कोई जरूरत नहीं। ये कैसे हो आप बहुत बड़ी सहन शक्ति की बात करें, ये बात सहन शक्ति की नहीं है। वो पूर्ण होश में है और चेहरे पर उनके दर्द की कोई शिकन नहीं है। ये बात सिद्ध करती है वास्तव में सत्पुरुष देह से अलग है, तो फिर भी पूर्ण होश में है, हम तो फिर भी मत होश में, लेकिन वो पूर्ण होश में, पूर्ण ज्ञानी है वो, पूर्ण शांत है वो और पूर्ण तृप्त है वो। तो सत्पुरुष की स्थिति को यदि ना देखा जाए, उनकी जब जीवन पढ़ते हैं तो ये दृष्टि हमारे सामने ना हो, यदि जो बात उन्होंने कही है उनके जीवन से जब तुलना करते हैं तो हम सही पाते हैं, लेकिन हम अज्ञानी के बीच में पलते हैं इसे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, शरीर ही सब कुछ है इसके ऊपर कुछ है ही, फिर बात ये भी करेंगे अरे मर जाएंगे फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, कुछ अच्छे कर्म कर लो, कुछ पुण्य कर्म कर लो अगले जन्म में सुख मिलेगा, ये बात भी करते फिर भी नहीं सोचते, मैं कह क्या रहा अगले जन्म में सुख मिलेगा इसका मतलब देह मर जाएगी फिर नई देह मिल जाएगी, ये नहीं सोचते मैं तो वही रहूंगा जो इस जन्म में पाप कर रहा है, जो दुष्कर्म कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, उसको सारे इसका बदले में इसको प्रारब्ध मिलेगा दुख भोगने वाला और अगले शरीर में इसको दुख भोगेगा, तब भी मैं नहीं सोच सकता। अब विचार करो हम बड़े ज्ञानवान बनते हैं, बड़े सत्संगी बनते हैं, लेकिन अपने ही बारे में क्या मैं सोचता हूं, तो बड़ी सरल सी बात है, कौन हर व्यक्ति सोच सकता। तो वाणी और ये वचन सब कुछ ये बात को याद दिला रहे हैं, झूठ देही संग आपा पाए, तो इस झूठ देही को जो तेरा स्वरूप है ही नहीं, जो तो है ही नहीं, इसको तू अपना स्वरूप समझ रहा है, आपा पाई अपने आप को शरीर करके देख रहा और देह के भोग में आ भी जाए, इसलिए तू देह के भोग में धक्का करता है, तो भोगता है, यही तेरे जीवन का लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को तो अपने परिवार को सिखा देता है, मैं भी अज्ञानी और मेरा परिवार भी अज्ञानी, तरह तरह की पूजा करता हूं, तरह तरह के धर्म पालन करता हूं, तरह तरह के व्रत करता हूं, मुझे धर्म भी समझ में नहीं आता, जब तुमने अपने आप को देह ही समझ लिया, तुम्हारी कहते प्रेमी धर्म का संबंध तो जीव के साथ है, धर्म का संबंध देह के साथ नहीं है, देह जड़ है, जीव चेतन है, जीव में चेतना है वो जानता है, इसी को महाराज जी बुद्धि कह रहे हैं कि बुद्धि सारे शरीर में फैली हुई है, ये चेतना मेरे सारे शरीर में है, मैं जानता हूं कि लोम लोम में जीवन है, तो बताइए मैं जिंदा वस्तु हूं, जानने वाला हूं और देह जड़ा मैं ये जानता हूं, ये मेरी जिस प्रकार ये शर्ट मेरी है उसी प्रकार देह भी मेरी है, जो चीज मेरी है वो जड़ है, जो मैं हूं वो चेतन है, मैं इन दोनों को मिला देता हूं, मतलब कि पतन के इस कगार पर मैं खड़ा हुआ हूं तब भी मेरे मुझको अपनी करनी पर अपनी चीजों पर कितना अहंकार है, चार डिग्री मैं यदि ले लूं कितना अहंकार हो जाता है, चार पैसे यदि कमा लूं कितना अहंकार हो जाता है, चार लोग मेरा सम्मान करने लगे कितना अहंकार हो जाता है, मेरी हर क्रिया हर सोच ये सिद्ध कर रही है कि मैं जड़ बुद्धि जीव हूं, अर्थात मेरे अंदर वो बुद्धि है ही नहीं जो मुझको ये सिखाती है कि मैं देह नहीं हूं, देह मर जाएगी, देह बूढ़ी हो जाएगी, मैं वैसे का वैसा ही रहूंगा, लेकिन एक दूसरी बात भी सब कुछ कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक यानी बुद्धि सारे शरीर में फैली हुई है, इसका ताल्लुक यानी संबंध शारीरिक संस्कारों के साथ होने के कारण असली तत्व को नहीं समझ सकती, बुद्धि सारे शरीर में फैली हुई है, इसका ताल्लुक यानी संबंध शारीरिक संस्कारों के साथ होने के कारण असली तत्व को नहीं समझ सकती, तो मेरे जो संस्कार हैं वो संस्कार देह के द्वारा जो कर्म हुए हैं और उनका जो फल भोगा है मैंने उसको संस्कार कहते हैं, तो ये सारे संस्कार जो हैं ये शरीर के कारण हैं और इकट्ठे कहाँ हैं, ये संस्कार मेरे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसका नाम है मन, ये सारे संस्कार उस मन में संग्रहित हो जाते हैं, मन में इकट्ठे होते हैं, और बुद्धि उन संस्कारों को जानती है, आप जानते हो मेरे मन में क्या चल रहा है, आप ये भी जानते हो कि ये ठीक है या गलत है। तो मैं जानने वाला हूं, मन के संस्कारों को फिर भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं वो हूं जो मन के संस्कारों को जानता है, मैं वो हूं जो देह के कर्मों को जानता है। इसीलिए सब कुछ आपको जब अध्यात्म विद्या पर आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम मानुष जन्म का क्या कहते हैं, सिमरन से लापरवाही करनी, अपनी मूल बर्बादी करनी है। ये बात गुरुदेव ने संत अभिलाष में लिखकर दी, सिमरन से लापरवाही करनी, अपनी मूल बर्बादी करनी है। लेकिन मैं सत्संगी बनने के पश्चात भी, महाजी को मानने के पश्चात भी मैं इस बात को सोचने को ही तैयार हूं। इसका प्रमाण यही है कि मैं यदि अपने दैनिक जीवन को देखूं, अपने शारीरिक कर्म को देखूं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी शारीरिक कर्म होती है। प्रभु की याद, अपने स्वरूप की याद, ये लास्ट आइटम होता है ज्यादातर लोगों को। समय बचेगा तो कर लेंगे। कोई कोई बड़ा सख्त होता है जिसकी बुद्धि में विवेक टिका रहता है, ऐसा नहीं। गुरु ने तो जब कहा है कि सिमरन से लापरवाही करनी है, अपनी मूल बर्बादी करनी है, तो मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसीलिए प्रातः काल उत्तर सबसे पहला काम वो ईश्वर की याद, ईश्वर का सिमरन, वो करता ही करता है। उसके बाद संसार के काम शुरू करता है। तो जो सिमरन करने वाले लोग हैं, जो नियम से सिमरन करते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जब सिमरन करने बैठता हूं तो उस समय प्रभु की याद करता हूं। प्रभु की याद किस रूप में, प्रभु का जो अवतार है मंत्र, मंत्रावतार के रूप में मैं प्रभु का संग करता हूं। लेकिन उसको पता है मेरे मन के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण जो संकल्प उठते हैं, जो विचार उठते हैं उसके अंदर, वो मेरे सिमरन में बाधक बनते हैं, मैं प्रभु भजन का आनंद नहीं ले पाता। तो मुझको संस्कार परेशान कर रहे हैं। जो व्यक्ति शास्त्र का स्वाध्याय बारीकी से करता है, उस पर मनन करता है, तो उसकी बुद्धि में यह निर्णय बना रहता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं वो हूं जो मन को जान रहा है, मैं वो हूं जो देह को जान रहा है, मैं देह के कारण परेशान हो रहा हूं, मन के कारण परेशान हो रहा हूं, ना देह परेशान हो रही है ना मन परेशान हो रहा है, ये दोनों जड़ चीजें, चेतन मैं, और मेरे ऊपर एक परम चेतन भी है, वो भी देह के अंदर है। सतगुरु तो अंतरलमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होके घटका पाटगा। मेरे ऊपर परम चेतन जिसको मैं गुरु कह रहा हूं, वो भी देह के अंदर ही मौजूद है, मेरी मदद कर रहा है। उसके बिना तो मेरे अंदर चेतना आ ही नहीं सकती। वो परम चेतन सत्ता है, सारे जगत की मालिक है, और मैं मुझको उसने इस देह का मालिक बनाया। सत्य यह है कि देह का सर्जनहार भी वह ही है, मैं नहीं। मैं नहीं जानता कि देह के ऑर्गन कैसे चलाए जाए, मैं नहीं जानता कि देह को जीवित कैसे रखा जाए, कि यह जीवित है। इसीलिए सब कुछ कहते हैं कि तू यदि गुरु की बात मान ले, गुरु की बात पर विचार करने को तैयार हो जाए, तो संसार के इतनी इतनी कठिन किताबें तो पढ़ लेता है, इतनी कठिन जो मैथमेटिक्स तुझको नहीं आती सीख लेता है, अंग्रेजी तुझको नहीं आती हिंदी मातृभाषा है तो सीख लेता है, कोशिश जो जिसके लिए भी करता है वो सीख लेता है, ये विद्या क्यों नहीं सीख सकता। लेकिन ना माता पिता को पता है कि मेरे बच्चे की सफलता इस विद्या को सीखने में, ना मुझको पता है कि इस विद्या को सीखने में मेरे जीवन की सफलता, इसलिए मुझे संगत की जरूरत पड़ती है, ऐसे साथी की जरूरत पड़ती है जो इस बात पर चलने वाला, इसकी बुद्धि का ये निश्चय हो चुका हो कि मैं देह नहीं, उसका संग यदि मिला तो उससे बातचीत का मौका मिलेगा, उससे विचार सुनने का सुनाने का मौका मिलेगा, सत्पुरुषों की बातों पर मनन होगा, चिंतन होगा, डिस्कशन होगा, ये बातें फिर आपके निश्चय में एक दिन आ जाती है। कल्याण आपका तभी होता है जब गुरु की बात मानकर आप उसके अनुसार बताए हुए प्रोग्राम पर चलने लगते हैं। तो संसार में किसी के मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई करते हो, नौकरी या व्यवसाय करते हो, तो आपको जीवन में सफलता मिलती है नहीं मिलती है व्यवसाय में नौकरी में, उसी प्रकार ईश्वर के बताए हुए जो मार्ग है और जो गुरु हैं या भक्त कोई है तो उनका संग जब करते हो, उनसे डिस्कशन जब करते हो, उनसे वार्तालाप जब आपकी होती है, उनसे मित्रता जब आपकी होती है, तब आपके अंदर भी उनकी बुद्धि में जो निश्चय है वो आपकी बुद्धि का भी निश्चय बन जाता है। यहाँ आके पता लगता है कि गुरु जो संसार में आते हैं तो संगत ही छोड़ जाते हैं, संगत इसीलिए छोड़ जाते हैं ताकि आप या हम लोग संगत किसका करेंगे। इसलिए महाजी ने जो महाजी को मानने वाले थे उनका नाम प्रेमी रखा, प्रेमी कहा था। प्रेमी का मतलब है डिवोटी। डिवोटी उसे कहते हैं जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर को जानने के लिए जीवन व्यतीत करता है, उसको प्रेमी कहते हैं। तो मैंने प्रेमी बनना था और मैं संसार प्रेमी बन गया, देह प्रेमी बन गया, पैसा प्रेमी बन गया, धर्म प्रेमी बन गया। वो धर्म प्रेमी बन गया जो धर्म है ही नहीं। महाजी खुद लिखकर दे रहे हैं समझा ब्लास्ट में, धर्म का देह से कोई संबंध नहीं है, धर्म का देह से कोई संबंध नहीं है, धर्म का संबंध जीव के साथ। ऐसे क्लियर बात है। इस एक सेंटेंस को मैंने, इतनी बड़ी समता ब्लास है, एक सेंटेंस ही मैंने वहां से नहीं सीखा। मेरी आध्यात्मिक पोजिशन यहां खड़ी हुई, मैं क्या कहता हूं, हनुमान को मानने वाला, राम को मानने वाला, मैं कृष्ण को मानने वाला, ये सारी देह है। हनुमान जी भी देह, राम भी देह, कृष्ण भी देह। जब तुमने देह ही समझ लिया तो कृष्ण का बताया हुआ धर्म, कृष्ण का बताया हुआ ज्ञान जो उन्होंने अर्जुन को सिखाया, जो गीता में लिखा है, वो मैं कब सीखूंगा। जब मैंने शरीर को ही सब कुछ समझ लिया तो मैं अपने आप को जीव कब समझूंगा। इसलिए मेरी पूजा भी मुझको कट्टर बना देती है धर्म के मामले में, मेरे कर्म भी मुझको कट्टर बना देते हैं, मेरा निश्चय भी मेरे मुझको कट्टर बना देता है। इसीलिए देखते हैं जब धर्म शरीर पर आ जाता है तो जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है और सारी दुनिया में हो रहा है कि धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार रहे हैं, धर्म के नाम पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अहंकार कर रहे हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, मैंने इतनों को मार दिया। अब बताओ यदि गुरु नहीं है तो धर्म किससे सीखोगे? आप तो जो समाज से धर्म सीखते हो वो कट्टर बन जाते हैं। ये मत समझिए कि हिंदू बुद्धिमान है, मुसलमान बुद्धिमान है, या ईसाई बुद्धिमान है, या सिख बुद्धिमान। जो शरीर से चिपका हुआ है वो बुद्धिमान नहीं है, उसकी बुद्धि में गहरा मद है, गहरा नशा है कि मैं देह हूं। इसीलिए धर्म जहां भी शरीर पर आकर टिक जाता है, वो देश, वो मोहल्ला, वो शहर, वो राज्य बर्बाद हो जाता है, होना ही उसमें बर्बाद। तो चीज को कुछ का कुछ समझ रहे हैं, दिन को रात समझ रहे हैं, रात को दिन समझ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? इसकी बुद्धि तो उल्लू वाली बुद्धि है, रात को दिन समझ रहा, दिन को रात समझ रहा। जो धर्म है ही नहीं, जो देह नाशवान है, यदि धर्म का संबंध देह के साथ में है तो धर्म ही नाश हो जाएगा, धर्म बचेगा था। लेकिन धर्म अमर चीज, महाजी कह रहे हैं कि प्रेमी समता को ही धर्म कहते हैं। समता का मतलब होता है समतत्व, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं, वही वाहेगुरु है। महाजी को शरीर थे क्या? यदि शरीर होते तो अपने शिष्य उनके उनके पैर दबा रहे हैं। महाजी समझ रहे हैं अंदर से ये मुझको देह ही समझ रहा है, इसलिए उनको अलर्ट करना है, प्रेमी ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं, इसको सिखा रहे, पास बैठ के सिखा रहे। प्रेमी ये खल्लड़ अर्थात ये शरीर, हड्डी का ढांचा, ये तेरा गुरु नहीं है। जिस दिन साधना करके अंदर अनुभव करेगा उस दिन पता लगेगा गुरु को मैंने समझा क्या था और गुरु निकला क्या। इतना स्पष्ट मार्गदर्शन गुरु का, फिर भी मैं इतने वहम में, मैं समतावादी हूं। क्यों समतावादी हूं? प्रेमी कहते हैं जब किसी की मृत्यु होती है हम सत्संग करते हैं, इसलिए हम समतावादी हैं। अरे भैया ये तो सामाजिक क्रिया है, इसका संबंध तो शरीर के साथ में। महाजी ने उसके अंदर संशोधन कर दिया था, यदि मनुष्य को सही ज्ञान मिलना चाहिए, विचार ही करना है तो शास्त्र पर विचार करो, जिसका नाम सत्संग है। तो सत्संग के द्वारा जो ज्ञान आप भूले पड़े हुए हो और देह पर आकर टिक गए हो, देह क्रियाएं आपको सिखाई जा रही हैं, चाहे पंडित है चाहे मुल्ला, सब देह की क्रिया सिखा रहे हैं, चाहे ईसाई, उनके यहाँ जो सब कुछ है उनकी स्थिति तो एक जैसी थी, वहां जी सत्यवास ने दिखा दी। लेकिन विश्व में सत्पुरुष विभिन्न नाम से विभिन्न रूपों से होते आए, उनके गुण और कर्म अलग अलग थे, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान रूप था वो एक ही ध्यान था। वहां को कोई वहम नहीं, मुझको वहम हो जाता मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मुझको वहम हो जाना। तो इनका संबंध देह के साथ, जीव ना ईसाई है ना हिंदू है ना मुस्लिम, इसीलिए ये वाणी कोई साधारण नहीं होती, सुनने में बड़ी साधारण लगती है, गायन करने में बड़ी साधारण लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके अर्थ पर यदि ध्यान ही नहीं दिया तो वाणी हमारा क्या कल्याण करेगी। जिस प्रभु ने आज के युग में कृपा करके ये वाणी हमारे लिए प्रकट की, उसके शब्द के अर्थ पर मैंने विचार ही नहीं किया। इसलिए वाणी आपको सिखा रही है कि जड़ देही को करे सर्जीत, सो ही तेरा रूप पुनीत। जो इस जड़ देही को जिंदा रखे हुए है, वो पाल रहा है, वही तेरा असली स्वरूप है। इसलिए अपने रूप की करो संभाल, दुर्मत काट देही का। ये तेरी दुर्मति है कि मैं देह, ये अज्ञान है, ये अज्ञानी बुद्धि का लक्षण है, तो ये दुर्मति है, इसको काट, क्योंकि ये तुझको देह के जाल में फंसाए हुए है। इसकी जगह क्या कर, अपने रूप की करो संभाल, जो तू वास्तव में है चेतन रूप, जो मन को देख रहा है, जो देह को देख रहा है, जो मन के द्वारा कष्ट भोग रहा है, जो देह के द्वारा कष्ट भोग रहा है, मैं वो जीवित वस्तु हूं, मैं वो चेतन हूं। इसीलिए जब बुद्धि कहते हैं इसको, इसमें दो चीजें शामिल हो जाती है, एक चेतना जो ईश्वर से डायरेक्ट आई है, एक दूसरा निर्णय है, बुद्धि का डिसीजन लेता, मैं जानता हूं क्या ठीक है क्या गलत है। जब दो मिल जाते हैं तब ये बुद्धि कहलाती है, जब इसमें से शुद्ध चेतन साधना करते करते चेतन रूप हो जाता है जीव, तो उस समय फिर ये बुद्धि नहीं, ये जीव नहीं, ये ईश्वर कहलाता है, ये ब्रह्म कहलाता है। इसलिए वो मेरा असली स्वरूप है, उसके लिए जीवन जीव, उसको प्राप्त करने की कोशिश करूं, ताकि मानव जीवन ओम ब्रह्म सिद्ध।